एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है एक और ज्ञान गोष्ठी में। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबके जीवन को छूता है, लेकिन जिसके बारे में हम शायद ज्यादा सोचते नहीं।
कौन सा विषय?
विज्ञान का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ साइंस।
ओहो, विज्ञान का दर्शन, बिल्कुल।
और इसके लिए हमारे गाइड होंगे समीर ओकाशा।
हाँ, ओकाशा, जिनके काम पर आधारित दो बेहतरीन स्रोत हमारे पास हैं।
कौन कौन से?
एक तो उनकी काफी विस्तृत किताब का सारांश है और दूसरा उनकी बहुत मशहूर अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सीरीज की किताब का निचोड़।
अच्छा, वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन वाली, हाँ वो तो काफी पॉपुलर है।
अब सवाल उठता है कि ये दार्शनिक बातें आज क्यों जरूरी हैं?
हाँ, ये जरूरी सवाल है।
देखिए, आज हम सूचना के मतलब एक तरह से महासागर में जी रहे हैं।
हाँ, हर तरफ से जानकारी,
हर तरफ से दावे किए जाते हैं, स्वास्थ्य पर, तकनीक पर, पर्यावरण पर, और सब पर वैज्ञानिक मुहर लगी होती है।
सही कहा, हर कोई कहता है साइंस ये कहती है।
तो ये समझना कि विज्ञान असल में काम कैसे करता है, उसकी ताकत क्या है और सीमाएं क्या हैं, ये हमें इन दावों को परखने की समझ देता है।
बिल्कुल, ये सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए जरूरी है।
एकदम, ओकाशा हमें यही समझने में मदद करते हैं कि विज्ञान कोई वो जादू की छड़ी नहीं है,
हाँ,
बल्कि एक जटिल, मानवीय और लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है।
तो चलिए इस दिलचस्प सफर में निकलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है।
बिल्कुल, शुरुआत करते हैं लेखक से, समीर ओकाशा।
हाँ,
ये नाम विज्ञान के दर्शन के क्षेत्र में काफी जाना माना है। वो ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और प्रतिष्ठित ब्रिटिश एकेडमी के फेलो भी हैं।
हाँ, और उनकी सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि वो सिर्फ किताबी दार्शनिक नहीं है।
बिल्कुल, मतलब उन्होंने असल विज्ञान पर, खासकर जीव विज्ञान के दर्शन पर बहुत काम किया है।
जैसे
एवोल्यूशन यानी विकासवाद, ऑल्ट्रुइज्म यानी परोपकारिता, इन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ है।
अच्छा,
और उन्हें लैकाटोस पुरस्कार भी मिला है, जो इस फील्ड में आप जानते हैं बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है।
हाँ हाँ लैकाटोस अवार्ड, बिल्कुल।
यही चीज उनके काम को अनोखा बनाती है। वो गहरे दार्शनिक सवालों को विज्ञान की वास्तविक प्रैक्टिस से, उसकी जमीनी हकीकत से जोड़ते हैं।
ऐसा नहीं लगता कि वो किसी हाथी दांत के टॉवर में बैठकर बातें कर रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
और उनकी लिखने की कला भी कमाल की है। वो मुश्किल से मुश्किल विचारों को इतने साफ और सरल तरीके से समझाते हैं,
हाँ, ये बात तो है,
कि कोई भी रुचि रखने वाला पाठक उन्हें समझ सकता है। कोई भारी भरकम शब्दावली का बोझ नहीं।
सच में उनकी किताबें पढ़ने में मजा आता है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है, वो भी बिना सिरदर्द के।
तो ओकाशा अपनी इन किताबों में करना क्या चाह रहे हैं? मतलब उनका मुख्य मकसद क्या है?
उनका मुख्य मकसद है विज्ञान की पहेली को सुलझाना, उसे आम लोगों के लिए खोलना।
अच्छा,
वो उन बुनियादी सवालों को उठाते हैं जिन पर वैज्ञानिक अपने रोजमर्रा के काम में शायद ही रुककर सोचते हों।
जैसे कि
विज्ञान असल में है क्या चीज, हम कैसे तय करें कि कौन सी बात वैज्ञानिक है,
हाँ,
और कौन सी नहीं।
हाँ, ये तो बड़ा सवाल है।
और विज्ञान ज्ञान हासिल करने का इतना कामयाब तरीका क्यों साबित हुआ है, क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं?
ये किताबें हमें स्कूल में पढ़ाए गए विज्ञान के सीधे सरल रास्ते से कहीं आगे ले जाती हैं।
हाँ बिल्कुल, स्कूल में तो लगता था कि बस प्रयोग करो, नतीजे देखो, नियम बनाओ, हो गया विज्ञान।
हाँ, बड़ा सीधा लगता था।
हाँ, जबकि ओकाशा दिखाते हैं कि विज्ञान की जो नींव है, जैसे वैज्ञानिक तर्क कैसे काम करता है या हम कैसे चीजों को एक्सप्लेन करते हैं।
अच्छा,
विज्ञान में बड़े बदलाव मतलब क्रांतियां कैसे आती हैं और हमारे सिद्धांत असलियत से कितना जुड़ते हैं।
हाँ,
ये सब गहरे दार्शनिक सवालों और बहसों से भरे पड़े हैं।
हाँ,
कोई सीधा जवाब नहीं है।
उनका एक केंद्रीय संदेश ये उभरता है कि विज्ञान की जबरदस्त सफलता के बावजूद उसकी दार्शनिक जड़ें काफी जटिल हैं।
हाँ, ये विरोधाभास जैसा है।
ये सिर्फ तथ्यों का ढेर नहीं है, ये एक बहुत ही परिष्कृत, रचनात्मक, मानवीय गतिविधि है जिसमें कल्पना, तर्क और लगातार उठने वाली चुनौतियां शामिल हैं।
तो यहाँ एक दिलचस्प तनाव है। विज्ञान भरोसेमंद है, पर उसकी नींव में कई अनसुलझी पहेलियां हैं।
हाँ, और इसी तनाव को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए अब ओकाशा के कुछ मुख्य विचारों को करीब से देखते हैं।
जरूर।
शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से, विज्ञान क्या है?
सुनने में कितना सीधा लगता है ना? हाँ, पर ये उतना सीधा है नहीं। इसे फलसफे में सीमांकन समस्या या डीमार्केशन प्रॉब्लम कहते हैं।
सीमांकन समस्या, मतलब
हम असली विज्ञान को छद्म विज्ञान यानी प्यूरो साइंस से कैसे अलग करें।
अच्छा, जैसे ज्योतिष या आजकल बहुत चलने वाले कई वेलनेस ट्रेंड्स।
हाँ बिल्कुल, क्या कोई पक्की लाइन है इनके बीच?
ये तो मुश्किल लगता है।
पहले कुछ दार्शनिकों जिन्हें तार्किक प्रत्यक्षवादी कहते हैं, उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक बात वो है जिसे हम अनुभव से सत्यापित कर सकें, मतलब वेरीफाई कर सकें।
वेरीफाई?
हाँ, अगर वेरीफाई नहीं हो सकती तो वो उनके हिसाब से बकवास है।
लेकिन फिर आए कार्ल पॉपर।
हाँ, पॉपर एक बहुत प्रभावशाली विचारक।
उन्होंने कहा, नहीं, असली चीज सत्यापन नहीं बल्कि असत्याकरणीयता, फॉल्सिफिकेशन है।
फॉल्सिफाइबिलिटी, ये क्या है?
पॉपर का कहना था कि किसी सिद्धांत को वैज्ञानिक कहलाने के लिए जरूरी है कि वो जोखिम उठाए।
जोखिम?
हाँ, जोखिम। उसे ऐसी भविष्यवाणियां करनी चाहिए जिन्हें गलत साबित किया जा सके।
ओहो, ये वाकई सोचने वाली बात है।
मतलब विज्ञान की ताकत सच साबित होने में नहीं बल्कि गलत साबित होने का खतरा है।
हाँ, जैसे आइंस्टाइन ने कहा कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को मोड़ देगा।
अच्छा,
अगर ऐसा नहीं होता तो उनका सिद्धांत गलत साबित हो जाता। इसी जोखिम ने उसे वैज्ञानिक बनाया।
पॉपर के हिसाब से जो सिद्धांत हर हाल में सही ही साबित हो सकता है वो शायद विज्ञान नहीं, आस्था है।
ये एक बड़ा क्रांतिकारी विचार था, लेकिन ओकाशा बताते हैं कि असल जिंदगी में वैज्ञानिक भी इतने सीधे नहीं चलते।
मतलब?
अगर कोई प्रयोग उनकी थ्योरी के खिलाफ जाता है तो वो फौरन थ्योरी को कूड़ेदान में नहीं फेंक देते।
हाँ, ऐसा तो होता है।
वो शायद कहेंगे कि भाई प्रयोग में गड़बड़ी थी, या थ्योरी में थोड़ा बदलाव कर लेंगे।
तो पॉपर का आइडिया भी पूरी कहानी नहीं कहता।
नहीं, शायद विज्ञान की कोई एक साफ सुथरी परिभाषा है ही नहीं।
फिर
ओकाशा यहाँ विटकिनस्टाइन के पारिवारिक समानता, फैमिली रिजेम्बलेंस वाले विचार का जिक्र करते हैं।
पारिवारिक समानता, जैसे एक परिवार में?
हाँ, जैसे एक परिवार में सब लोगों की नाक एक जैसी नहीं होती, पर कुछ कुछ मिलता जुलता होता है। किसी की आंखें, किसी के बाल, किसी का स्वभाव।
अच्छा, मतलब विज्ञान की अलग अलग शाखाओं में भी ऐसा ही है?
हाँ, जैसे भौतिकी, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र, इनमें कुछ मिलती जुलती बातें होंगी, जैसे सबूत पर जोर देना, तर्क का इस्तेमाल, प्रयोग करना। पर कोई एक चीज सब में हो यह जरूरी नहीं। ये ज्यादा यथार्थवादी लगता है ना?
हाँ, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, बिल्कुल। अब अगले बड़े मुद्दे पर आते हैं, वैज्ञानिक तर्क, साइंटिफिक रीजनिंग।
हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है।
विज्ञान सिर्फ तथ्यों का कलेक्शन नहीं बल्कि सोचने और तर्क करने का एक खास तरीका है।
और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, विज्ञान ज्यादातर आगमन, इंडक्शन पर निर्भर करता है।
आगमन और कटौती भी तो होता है, डिडक्शन।
हाँ, कटौती में हम असामान्य नियम से खास नतीजे पर पहुंचते हैं। जैसे सभी इंसान नश्वर हैं, सोक्रेटिस इंसान है इसलिए सोक्रेटिस नश्वर है, ये तो सीधा है।
ठीक है,
लेकिन आगमन उल्टा चलता है, हम खास उदाहरणों से सामान्य नियम बनाते हैं।
जैसे हमने हजार बार देखा कि पानी 100 डिग्री पर उबलता है।
हाँ,
तो हमने नियम बना लिया कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। विज्ञान ऐसे ही नियमों से भरा पड़ा है।
यहीं पर एंट्री होती है महान दार्शनिक डेविड ह्यूम के।
डेविड ह्यूम
और उनकी आगमन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन की।
ह्यूम ने पूछा, भाई आप किस आधार पर ये मान लेते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज अतीत में हजारों बार हुई है वो भविष्य में भी होगी?
अरे,
हम तार्किक रूप से इसे कैसे साबित कर सकते हैं?
अरे बाप रे, ये तो बड़ा गहरा सवाल है। हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में यही मानकर चलते हैं।
बिल्कुल,
सूरज कल उगा था, परसों उगा था, तो कल भी उगेगा।
दवा ने पिछली बार काम किया था तो अगली बार भी करेगी। हाँ, इसी भरोसे पर तो दुनिया चल रही है। न्यूम ने दिखाया कि हमारा ये भरोसा एक छिपी हुई धारणा पर टिका है कि प्रकृति एक समान रूप से काम करती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर।
अच्छा, प्रकृति एक जैसी रहेगी।
हाँ, लेकिन इस धारणा को हम कैसे साबित करें? हम कहेंगे, देखो अतीत में तो प्रकृति ने हमेशा एक जैसा ही बर्ताव किया है।
हाँ, यही कहेंगे।
पर ये तो वही बात हो गई, हम आगमन को सही ठहराने के लिए आगमन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक गोलाकार तर्क है,
सर्कुलर आर्गुमेंट।
क्या बात है, मतलब विज्ञान जिस नींव पर खड़ा है उस पर ही एक तार्किक सवालिया निशान है।
हाँ बिल्कुल, ये सुनकर थोड़ा
हिल गया मैं।
हाँ, ये विज्ञान के दर्शन की सबसे बड़ी और अनसुलझी पहेलियों में से एक है। लेकिन जाहिर है वैज्ञानिक आगमन का इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, करते तो है।
ओकाशा एक और तरीके का जिक्र करते हैं जिसे सर्वोत्तम स्पष्टीकरण का अनुमान, इन्फरेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, IBE कहते हैं।
IBE, इन्फरेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ये क्या है?
इसमें हम सीधे नियम नहीं बनाते बल्कि ये देखते हैं कि कौन सी परिकल्पना हाइपोथेसिस हमारे पास मौजूद सबूतों को सबसे अच्छे तरीके से समझाती है।
इसका कोई उदाहरण?
डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत।
अच्छा, डार्विन।
डार्विन ने ये नहीं कहा कि उन्होंने हर प्रजाति को लाखों साल में बदलते हुए देखा है।
हाँ, ये तो मुमकिन नहीं।
उन्होंने दिखाया कि उनकी थ्योरी कि प्रजातियां प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन से धीरे धीरे विकसित होती हैं, वो जीवाश्मों, अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले जीवों, उनकी शारीरिक बनावट, ऐसे ढेरों अलग अलग तरह के सबूतों का सबसे अच्छा, सबसे सुसंगत स्पष्टीकरण देती है किसी भी और सिद्धांत के मुकाबले।
अच्छा, तो ये जासूसी कहानी की तरह है। आपके पास कई सुराग है, सबूत है।
हाँ।
और आप वो कहानी सिद्धांत चुनते हैं जो इन सभी सुरागों को सबसे अच्छे से जोड़ती है।
बिल्कुल सही पकड़ा। आईबीवी विज्ञान में बहुत आम है, खासकर उन चीजों के बारे में जिन्हें हम सीधे देख नहीं सकते।
ठीक है, तो हमने देखा कि विज्ञान क्या है ये तय करना मुश्किल है।
हाँ, और उसका तर्क भी सीधी रेखा में नहीं चलता। आगमन की अपनी समस्या है, आईबीई है।
अच्छा,
तो अब आते हैं विज्ञान के एक और बड़े दावे पर कि वो चीजों को स्पष्ट करता है।
एक्सप्लेन।
हाँ, स्पष्टीकरण।
पर वैज्ञानिक स्पष्टीकरण का मतलब क्या है? सिर्फ ये बता देना कि क्या हुआ, या ये भी कि क्यों हुआ?
इस पर भी काफी बहस हुई है। एक मशहूर मॉडल था कार्ल हेम्पल का कवरिंग लॉ मॉडल।
कवरिंग लॉ मॉडल।
उन्होंने कहा कि किसी घटना को समझाना मतलब उसे किसी सामान्य वैज्ञानिक नियम के दायरे में लाना।
जैसे?
जैसे अगर लोहे की छड़ गर्म करने पर फैली तो हमने उसे समझाया क्योंकि हमें नियम पता है कि धातुएं गर्म करने पर फैलती हैं।
ये तो ठीक लगता है, इसमें क्या दिक्कत है?
लेकिन ओकाशा बताते हैं कि इसमें भी पेंच है। एक है समरूपता की समस्या,
प्रॉब्लम ऑफ सिमेट्री।
हाँ, झंडे और परछाई वाला उदाहरण याद है?
हाँ हाँ।
हम झंडे की ऊंचाई से परछाई की लंबाई समझा सकते हैं, ये ठीक है।
हाँ।
लेकिन क्या हम परछाई की लंबाई से झंडे की ऊंचाई समझा सकते हैं? मॉडल के हिसाब से तो हाँ, क्योंकि नियम तो दोनों तरफ काम करता है।
पर असल में तो नहीं, ये तो उल्टा लग रहा है।
बिल्कुल, क्योंकि कारण कार्य की दिशा गलत है। झंडा कारण है, परछाई नतीजा।
अच्छा, समझा।
हाँ, और दूसरी अप्रासंगिकता की समस्या भी थी।
अप्रासंगिकता?
हाँ, वो गर्भवती पुरुष वाला मजाकिया उदाहरण।
हाँ हाँ।
मॉडल गणितीय रूप से सही व्याख्या दे सकता है जो असल में पूरी तरह बकवास हो। इसे पता चलता है कि शायद समझाने के लिए सिर्फ नियम जानना काफी नहीं।
तो फिर क्या चाहिए?
हमें शायद कारण कार्य संबंध को पकड़ना जरूरी है।
ये सब दिखाता है कि जिन्हें हम विज्ञान की सीधी सादी बातें समझते हैं उनके पीछे कितने गहरे दार्शनिक सवाल छिपे हैं।
बिल्कुल। और अब एक और बड़ी बहस पर आते हैं जो आज भी जारी है, यथार्थवाद बनाम अयथार्थवाद।
रियलिज्म वर्सेस एंटी रियलिज्म, रियलिज्म वर्सेस एंटी रियलिज्म, ये क्या है?
सवाल ये है कि क्या हमें विज्ञान के उन सिद्धांतों पर यकीन करना चाहिए जो ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते?
हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन, जीन, डार्क मैटर।
हाँ बिल्कुल। क्या ये चीजें सच में हैं या सिर्फ हमारे मॉडल बनाने के तरीके हैं हमारी सहूलियत के लिए?
हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या इलेक्ट्रॉन सच में घूम रहा है या ये बस एक तरीका है चीजों को समझने का?
यथार्थवादी कहते हैं हाँ भाई, ये सच है, कम से कम लगभग सच है।
क्यों? उनका तर्क क्या है?
उनका सबसे बड़ा तर्क है चमत्कार नहीं,
नो मिरेकल्स।
वो कहते हैं कि सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन सच में नहीं होते तो हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ये सब कैसे काम करते?
बात तो सही है।
अगर हमारे सिद्धांत सच के करीब नहीं होते तो उनकी ये जबरदस्त कामयाबी एक चमत्कारी होती। सफलता सच का सबूत है।
ये दमदार तर्क लगता है।
दूसरी तरफ अयथार्थवादी ज्यादा सतर्क हैं। वो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं देखो, विज्ञान का लक्ष्य सच बताना नहीं बल्कि ऐसे सिद्धांत बनाना है जो काम करें।
काम करें मतलब?
मतलब जो हमें सही भविष्यवाणी करने और तकनीक बनाने में मदद करें, जिन्हें अनुभवजन्य रूप से पर्याप्त, एम्पिरिकली एडिक्वेट कहते हैं।
अच्छा।
हमें ये मानने की जरूरत नहीं कि इलेक्ट्रॉन जैसी चीजें हूबहू वैसी ही हैं जैसा सिद्धांत बताता है। वो उपयोगी कल्पना भी हो सकती है।
और वो इतिहास का हवाला देते हैं जिसे निराशावादी मेटा इंडक्शन, पेसिमिस्टिक मेटा इंडक्शन।
ये क्या बला है?
कहते हैं इतिहास देखो, पहले के कितने सारे सफल वैज्ञानिक सिद्धांत जैसे फ्लोजिस्टन या ईथर अफ्लोजिस्टन,
हाँ,
आज गलत साबित हो चुके हैं। तो भाई क्या गारंटी है कि हमारे आज के सिद्धांत सही हैं?
अरे हाँ, ये भी सोचने वाली बात है।
शायद वो भी भविष्य में गलत निकले।
ये बहस आज भी जोरों पर है और दिखाती है कि विज्ञान और वास्तविकता के बीच का रिश्ता कितना जटिल है। और विज्ञान सिर्फ स्थिर नहीं रहता है, वो बदलता है। पर कैसे? क्या ये बस ज्ञान की ईंटें जोड़ते जाना है?
नहीं, यही पर थॉमस कून का काम सामने आता है, जिसने विज्ञान के बदलावों को देखने का नजरिया ही बदल दिया।
कून? हाँ, इनका नाम तो सुना है, पैराडाइम शिफ्ट वाले।
हाँ बिल्कुल। कून ने कहा कि विज्ञान हमेशा सीधी रेखा में तरक्की नहीं करता। उन्होंने पैराडाइम का आइडिया दिया।
पैराडाइम ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है?
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक पूरे वैज्ञानिक समुदाय का सोचने का ढांचा है, उनकी मान्यताएं, उनके तरीके, उनके सवाल पूछने का ढंग, सब कुछ, उनका पूरा विश्व दृष्टिकोण।
अच्छा, एक तरह का चश्मा जिससे वो दुनिया को देखते हैं?
हाँ, कुछ वैसा ही। ज्यादातर समय वैज्ञानिक सामान्य विज्ञान में काम करते हैं।
सामान्य विज्ञान
मतलब वो मौजूदा पैराडाइम के अंदर रहकर ही काम करते हैं, उसकी पहेलियां सुलझाते हैं, उसे और मजबूत करते हैं, वो पैराडाइम पर सवाल नहीं उठाते।
ठीक है,
लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याएं या नतीजे सामने आते हैं जो मौजूदा पैराडाइम में फिट नहीं बैठते। इन्हें कोन ने विसंगतियां, अनोमलीज का, जब ये बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो क्राइसिस पैदा होता है। वैज्ञानिक मौजूदा तरीके पर शक करने लगते हैं
और फिर,
और यहीं से वैज्ञानिक क्रांति या पैराडाइम शिफ्ट का रास्ता खुलता है।
ओहो,
एक पुरानी पैराडाइम को हटाकर बिल्कुल नई पैराडाइम आ जाती है। जैसे कोपरनिकस ने धरती को ब्रह्मांड के केंद्र से हटाकर सूरज को वहां रख दिया।
हाँ, या आइंस्टाइन ने न्यूटन के समय और स्थान के विचारों को बदल दिया।
बिल्कुल, ये बड़े बदलाव हैं, पैराडाइम शिफ्ट।
कोहेन के दो विचार बहुत विवादास्पद रहे। एक अतुलनीयता।
अतुलनीयता मतलब तुलना नहीं हो सकती।
हाँ, कि अलग अलग पैराडाइम इतने अलग होते हैं कि उनकी सीधे तुलना करना मुश्किल है, जैसे वो अलग अलग भाषाएं बोल रहे हों।
अच्छा,
और दूसरा, डेटा का सिद्धांत आधारित होना, थ्योरी लेडननेस ऑफ डेटा।
थ्योरी लेडननेस ऑफ डेटा,
यानी हम जो देखते हैं वो भी हमारी मान्यताओं, पैराडाइम से प्रभावित होता है। कोई भी अवलोकन पूरी तरह तटस्थ नहीं होता।
क्या मतलब? क्या इसका मतलब यह है कि सत्य जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब अपनी अपनी पैराडाइम पर निर्भर करता है?
हाँ, यही डर था। इससे तो सापेक्षवाद, रिलेटिविज्म का खतरा लगता है।
हाँ, ये चिंता उठी थी, लेकिन खून का मकसद शायद ये दिखाना था कि वैज्ञानिक असहमतियां कितनी गहरी हो सकती हैं और उन्हें सुलझाना क्यों मुश्किल होता है।
और ये कि जिसे हम सबूत कहते हैं वो भी हमेशा सीधा साफ नहीं होता।
बिल्कुल, ओकाशा इन विचारों को समझाते हैं लेकिन वो कट्टर सापेक्षवाद से बचते हैं।
ओकाशा ये भी दिखाते हैं कि ये दार्शनिक मुद्दे सिर्फ बड़े सिद्धांतों में नहीं, बल्कि फिजिक्स, बायोलॉजी, साइकोलॉजी जैसी खास विज्ञान की शाखाओं के अंदर भी रोज सामने आते हैं।
अच्छा, जैसे?
जैसे बायोलॉजी में जीवों का वर्गीकरण कैसे करें, अलग अलग तरीके हैं, क्लेडिस्टिक्स, फेनेटिक्स, उनमें अपनी अपनी दार्शनिक मान्यताएं हैं।
हाँ, या साइकोलॉजी में दिमाग कैसे काम करता है, क्या वो एक यूनिट है या अलग अलग मॉड्यूल हैं, इस पर भी बहस है।
ये सब दिखाता है कि दर्शन सिर्फ बाहर से विज्ञान को नहीं देखता, वो विज्ञान के अंदर ही मौजूद है।
अंत में अवकाशा विज्ञान और उसके आलोचकों, साइंस एंड इट्स क्रिटिक्स पर भी बात करते हैं।
हाँ, आजकल विज्ञान की आलोचना भी तो खूब होती है।
हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान भी सामाजिक मान्यताओं से बनता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। कुछ विज्ञान पर पश्चिमी या पुरुषवादी होने का आरोप लगाते हैं।
हाँ, ये भी सुना है।
और कुछ विज्ञानवाद की आलोचना करते हैं, यानी ये मान लेना कि विज्ञान ही सब कुछ जानने का एकमात्र या सबसे अच्छा तरीका है।
तो अवकाशा का क्या रुख है इस पर?
अवकाशा यहाँ एक संतुलित रास्ता अपनाते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, विज्ञान समाज से प्रभावित होता है और उसे अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए। विज्ञानवाद गलत है,
लेकिन
वो ये भी मानते हैं कि अपने तरीकों जैसे प्रयोग, तर्क, पीयर रिव्यू के कारण विज्ञान आज भी ज्ञान हासिल करने का सबसे भरोसेमंद जरिया है। वो कट्टर सापेक्षवाद को खारिज करते हैं।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें क्या निकलती हैं, कुछ की थीम्स?
हाँ बिल्कुल, मेरे लिए पहली है वैज्ञानिक तर्क की जटिलता। ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है।
सही कहा, इसमें इंसानी सोच, रचनात्मकता और व्याख्या शामिल है।
दूसरा, विज्ञान का ऐतिहासिक और सामाजिक पहलू। विज्ञान वैक्यूम में नहीं होता, वो समय और समाज के साथ बदलता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी नामुमकिन है। विज्ञान लगातार कोशिश करता है अपनी पक्षपातों से ऊपर उठने की।
हाँ, तीसरा, डेटा और सिद्धांत का रिश्ता सीधा नहीं है। एक ही सबूत को कई तरह से समझा जा सकता है,
जिसे आपने कहा था अंडर डिटर्मिनेशन।
हाँ, और हम जो देखते हैं वो भी हमारे सिद्धांतों से प्रभावित होता है,
थ्योरी लेडनेस। चौथा, वैज्ञानिक प्रगति होती है पर शायद सीधी रेखा में नहीं, बल्कि क्रांतियों और बदलावों के जरिए विज्ञान समस्याओं को हल करने में बेहतर होता जा रहा है।
और पांचवा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, विज्ञान शक्तिशाली है पर सर्वज्ञानी नहीं है।
हाँ, इसकी अपनी सीमाएं हैं।
हमें विज्ञानवाद और विज्ञान विरोधी अंधविश्वास दोनों से बचना है।
कुछ विचार वाकई दिमाग में घूमते रह जाते हैं, जैसे पॉपर की वो बात।
कौन सी?
विज्ञान की पहचान सच साबित होना नहीं बल्कि गलत साबित होने का जोखिम उठाना है। ये कितनी बड़ी बात है। ये विज्ञान को विनम्र बनाता है।
हाँ, और जो ह्यूम का सवाल, हमारा पूरा विज्ञान इस भरोसे पर टिका है कि भविष्य अतीत जैसा होगा, पर इस भरोसे का आधार क्या है सिवाय अतीत के?
ये वैज्ञानिक दावों पर थोड़ी विनम्रता सिखाता है। बिल्कुल।
या कुहुन का ये कहना, अलग पैराडाइम वाले वैज्ञानिक अलग भाषा बोलते हैं, अलग दुनिया में रहते हैं।
ये हमें गहरी असहमतियों को समझने में मदद करता है, चाहे वो विज्ञान में हो या समाज में।
और यथार्थवादियों का तर्क, अगर हमारे सबसे सफल सिद्धांत जो हमें चांद पर ले गए, बीमारियां मिटाईं, सच के करीब भी नहीं है, तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है।
हाँ, ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता और सच्चाई में क्या रिश्ता है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? फिलॉसफी ऑफ साइंस से हमें क्या मिलेगा?
मेरे ख्याल से बहुत कुछ। सबसे पहले ये हमें मीडिया में आने वाले वैज्ञानिक दावों को ज्यादा समझदारी से देखने में मदद करता है।
कैसे?
हम पूछ सकते हैं, क्या ये दावा टेस्ट किया जा सकता है? क्या ये फॉल्सिफाइबल है जैसा पॉपर ने कहा? क्या सबूत पेश किए गए हैं? कहीं ये सिर्फ एक कहानी तो नहीं?
बिल्कुल, ये हमारी वैज्ञानिक साक्षरता, साइंटिफिक लिटरेसी को गहरा करता है। हम सिर्फ नतीजे नहीं, प्रक्रिया को भी समझने लगते हैं।
हाँ, और ये हमें बेहतर फैसले लेने में मदद कर सकता है।
जैसे?
जैसे कोई नई हेल्थ स्कीम या डाइट अपनाने से पहले हम सिर्फ फायदों की पुष्टि करने के बजाय पॉपर की तरह पूछ सकते हैं, ये कैसे गलत साबित हो सकती है, इसके क्या जोखिम है।
हाँ, ये तरीका किसी भी योजना को ज्यादा मजबूत बना सकता है, चाहे वो बिजनेस प्लान हो या घर खरीदने का फैसला।
और कुहुन का पैराडाइम वाला आइडिया हमें समाज में या परिवार में होने वाली गहरी असहमतियों को समझने में मदद कर सकता है।
कैसे?
कई बार लोग इसलिए सहमत नहीं होते क्योंकि उनकी दुनिया देखने का चश्मा पैराडाइम ही अलग होता है। वो एक ही चीज को अलग तरह से देख रहे होते हैं।
हाँ, ये बात तो है। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, ये बौद्धिक विनम्रता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाता है।
बौद्धिक विनम्रता।
हाँ, विज्ञान इतना महान होकर भी अपनी सीमाओं को जानता है। वो मानता है कि ज्ञान हमेशा अस्थाई है और बदल सकता है। ये हमें भी सिखाता है कि हम गलत हो सकते हैं और हमें दूसरों को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये एहसास है कि विज्ञान कितना जटिल और मानवीय है। ये कोई ठंडी मशीनी प्रक्रिया नहीं है।
सही कहा।
और ये थ्योरी लेडननेस ऑफ डेटा वाला विचार कि हम जो देखते हैं वो भी हमारी मान्यताओं से रंगा होता है, ये वाकई चौंकाने वाला है।
ये हमारी अपनी ऑब्जेक्टिविटी पर सवाल खड़े करता है।
और मेरे लिए ये समझना कि विज्ञान की नींव में इतनी पहेलियां और अनिश्चितताएं हैं, इसने असल में विज्ञान पर मेरा भरोसा बढ़ाया है, कम नहीं किया।
अच्छा, ये कैसे?
क्योंकि ये दिखाता है कि विज्ञान अपनी कमजोरियों को जानता है और लगातार खुद को सुधारने की कोशिश करता है। वो सवालों से भागता नहीं, ये उसके असली ताकत है। ये हमें विज्ञान की इज्जत करना सिखाता है बिना उसे भगवान बनाए।
बिल्कुल सही कहा।
और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं।
हाँ, जरूर।
वे क्यों सही है कि हमारा अवलोकन भी हमारे सिद्धांतों से प्रभावित होता है, तो फिर अलग अलग सोच रखने वाले वैज्ञानिक समुदाय किसी मुद्दे पर सबूत के आधार पर कैसे एकमत हो सकते हैं? क्या वस्तुनिष्ठ सत्य, ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तक पहुंचना वाकई संभव है, या ये हमेशा अधूरा रहेगा?
सोचने वाला सवाल है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।